TS6 विश्वास के कार्य, अपने विश्वास के दावे के अनुसार जीना, विश्वास जोखिम उठाता है। डॉक्टर डेविड प्लाट। यदि आपके पास बाइबल है, और मेरी आशा है कि आपके पास है, तो मेरे साथ याकूब 2 निकालें, साथ ही यहोशू 2 को भी खोजें। मैं आपको पवित्र शास्त्र के 2 परिच्छेदों को एक साथ दिखाना चाहता हूं। वचन में हमारे समय के लिए मेरा लक्ष्य 2 स्तरीय है। पहले मैं चाहता हूं हम धर्मी ठहराए जाने के बारे में सोचें और कैसे याकूब जो कह रहा है वो पूरे नए नियम के अनुरूप है। और किसी भी बात से बढ़कर मैं चाहता हूं कि हम में से प्रत्येक को धर्मी ठहराए जाने की स्पष्ट समझ हो, और ये कि परमेश्वर के सामने सही घोषित किए जाने का क्या अर्थ है। इस समय यहाँ पर बहुत कम ऐसी बातें हैं जो इससे बढ़कर अनंत रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि यहाँ पर हम दुविधा या धोखे में हैं, तो इससे सब कुछ प्रभावित होता है। अतः मैं चाहता हूँ कि हमें इस बात की स्पष्ट समझ हो कि परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाने का क्या अर्थ है। और फिर दूसरा, मैं चाहता हूं कि हम थोड़े और व्यवहारिक रूप में निर्णायक प्रयोग के बारे में और इसके बारे में सोचें कि विश्वास को कार्य में कैसे ढाला जाए। याकूब 2, मैं चाहता हूं हम पद 14 से आरंभ करें। विश्वास को कार्य में देखते हुए, विशेषता जब ये निर्धनों की देखभाल से संबंधित है, और मैं चाहता हूं कि हम पद 14 में आरंभ करें, पद 25 और 26 पर आएं, जहां याकूब 2 के इन अंतिम 2 पदों पर हम ध्यान देने वाले हैं। मैं पद 14 से आरंभ करूंगा। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहब वैश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। याकूब अध्याय 2 पद 14 से 26। पद 26 याकूब 2 के दूसरे आधे भाग का मुख्य विषय है। इसका 3 अलग अलग समयों पर वर्णन किया गया है। पद 17 विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो मरा हुआ है। पद 20 कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। पद 26 विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। और याकूब हमें अब्राहम में इसका उदाहरण देता है, और फिर वो कहता है, वैसे ही जो दिखाता है कि वो हमें यहाँ कोई नया सत्य नहीं दे रहा है, वो हमें उसी सत्य का एक और उदाहरण दे रहा है। वैसे ही राहब, अब हम संभवतः अब्राहम की कहानी की तुलना में राहब की कहानी से थोड़ा कम परिचित हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जल्दी से यहोशू 2 में चलें, और मैं चाहता हूँ कि हम यहोशू 2:1 में राहब की तस्वीर को देखें। संदर्भ ये है, परमेश्वर के लोग, इसराइली लोग वादे के देश की सीमा पर हैं और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उस देश पर अधिकार करने में उनकी अगुवाई करने वाला है। यरीहो देश का पहला बड़ा नगर है और यहोशू कुछ भेदियों को चुनता है कि वे देश में विशेषता यरीहो में जाएं और उसका भेद लें। और यहोशू 2:1 में हम यहीं से देखते हैं, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शीतम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। अब जल्दी से एक टिप्पणी, यहोशू 2 की शुरुआत पर सवाल उठाए जा सकते हैं, परंतु यथार्थ यह है कि उन दिनों में राहब जैसा काम करने वाले लोगों का कार्य राहगीरों को सराय उपलब्ध कराना भी था। ये एक ऐसा घर था जो नगर की बाहरी सीमा पर था, जहां नगर में से होकर जाने वाले लोग रुकते थे। ये केवल इसे स्पष्ट करने के लिए था। पद 2, तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इसराइली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कोई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यर्दन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, त्यों ही फाटक बंद किया गया। ये लेटने ना पाए थे कि वो स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुंदर का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले इमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट न करे तो हमारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहब, जिसका घर शहर पना पर बना था और वो वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाएं। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों, वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष रहेंगे, परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। वे जाकर पहाड़ पर पहुँचे और वहाँ खोजने वालों के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं ना पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुँचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया, और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वो सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। यहोशू अध्याय 2:2-24। निर्णायक राहब। अब यहोशू 2 में समझने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि याकूब नए नियम में इस पुराने नियम की वेश्या को क्यों लाता है। यहीं पर मैं आपको निर्णायक राहब के बारे में एक झलक देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में सोचें कि इस कहानी में उसके जीवन में क्या हो रहा है। वो अस्वीकार्य अनुग्रह को पाने वाली थी। सबसे पहले राहब अस्वीकार्य अनुग्रह को पाने वाली थी। मेरा मतलब अनैतिक अनुग्रह नहीं है, बल्कि चौंकाने वाला, झकझोर देने वाला अनुग्रह है। इस प्रकार का अनुग्रह कि ये सब क्या हो रहा है। आप याकूब 2 पर लौटें और आप दोनों के बीच संबंध को देखते हैं। इसके बारे में सोचें, अब्राहम और राहब। आपके सामने यहूदी राष्ट्र का पिता है और एक अन्य जाति की वेश्या है, सर्वोच्च सामाजिक क्रम का एक धनी व्यक्ति और निम्नतम सामाजिक क्रम की एक स्त्री, एक कुलीन व्यक्ति और एक साधारण नागरिक। यही बात आपको चौंका देती है। अब्राहम और राहब, और इसे आप पद 25 में याकूब की वाणी में लगभग सुन सकते हैं, वैसे ही राहब वेश्या भी क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरी। मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ, मत्ती 1। यदि आपकी बाइबल में इस पर निशान नहीं लगा है तो इस पर निशान लगाने की आवश्यकता है। ये उससे हो सकता है जिसे हम पहले मत्ती 1 में देख चुके हैं। परंतु क्या आपको याद है जब हम बात कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने एक मोआबी स्त्री को लेकर उसे अपने परिवार में जोड़ा, और हम मत्ती 1 में यीशु की ओर जाने वाली वंशावली में रूथ का नाम देखते हैं। मैं आपको यहाँ मत्ती 1 में एक और नाम दिखाता हूँ। ये यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र की वंशावली है। पद 5, मत्ती लिखता है, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। यहाँ राहब पर निशान लगाएं। बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। आपने इसे समझा, राहब रूत की सास थी। ये किस प्रकार की वंशावली है। मोआबी स्त्रियाँ, यरीहो की वेश्या। भाइयों और बहनों, ये वास्तव में अच्छी खबर है कि ब्रह्मांड के पवित्र परमेश्वर ने व्यापक पाप के परे देखकर सर्वाधिक असंभव लोगों को अपनी वंशावली में अपने परिवार में चुना। हमें से किसी के भी इस विश्वास के परिवार में होने का केवल यही कारण है, क्योंकि ब्रह्मांड के परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के पाप की गंदगी को पार देखा, और उसने मुझे और आपको अपने पुत्रों और पुत्रियों के रूप में, अपने राज के वारिसों के रूप में गोद लिया है। ये पूर्णता अस्वीकार्य अनुग्रह है। ये चौंकाने वाला है, झकझोर देने वाला है। ये अस्वीकार्य अनुग्रह को पाने वाली थी। उसमें सर्वोच्च परमेश्वर के प्रति भय और श्रद्धा थी। दूसरा, उसमें सर्वोच्च परमेश्वर के प्रति भय और श्रद्धा थी। उसमें सर्वोच्च परमेश्वर के प्रति भय और श्रद्धा थी। क्या आपने सुना, राहब ने यहोशू अध्याय 2:11 में भेदियों से क्या कहा था। उसने कहा, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब इसे समझें, राहब ने केवल कुछ सुना था। उसने थोड़ा बहुत सुना था। उसने सुना था कि परमेश्वर के लोग कैसे लाल समुंदर के बीच में से सूखी धरती पर चले थे, और उसने सुना था कि कैसे उन्होंने इन राजाओं को पराजित किया था। और उसने कहा, मैं तुम्हारे परमेश्वर के बारे में जानती हूँ, परमेश्वर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, परंतु उसने उस पर विश्वास किया। तुम्हारा परमेश्वर ऊपर के आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर सर्वोपरि है। वो जानती थी कि परमेश्वर सारी बातों के ऊपर सर्वोच्च था। वो जानती थी कि वो उसके प्रति जवाबदेह थी। वो जानती थी कि इस परमेश्वर का न्याय उस पर और उसके देश पर आने वाला था, और यही कुंजी है। हम इसके बारे में सोचने वाले हैं कि इस कार्य को करने में राहब के सामने क्या जोखिम थी, और यहोशू 2 में उसने जो किया उसकी उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी। परंतु वहां पर पहुंचने से पहले मैं चाहता हूं हम ये देखें कि वो यहोशू 2 में ये सारी जोखिम क्यों उठा रही थी, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। और जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो कौन है, ऊपर के आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर, तो आप सारी जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब्राहम में यही तस्वीर है। वो अपने एकमात्र पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार क्यों था? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। राहब ने अपने जीवन को जोखिम में क्यों डाला? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। ये विश्वास ही है जो कट्टर आज्ञा पालन को उत्पन्न करता है। उसमें सर्वोच्च परमेश्वर के प्रति भय और श्रद्धा थी। परमेश्वर की महिमा को फैलाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। तीसरी विशेषता, इसके परिणाम स्वरूप अनुग्रह को पाने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली, उसने परमेश्वर की महिमा को फैलाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ सोचें कि राहब यहोशू 2 में क्या खतरा उठा रही थी। यदि यरीहो के राजा को पता चल जाता कि ये पुरुष अब भी उसके घर में थे और उसने इन भेदियों को पनाह दी थी, यदि पता चल जाता तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता, और संभव है उसके साथ उसके पूरे घराने को भी। देशद्रोही, राजद्रोह, कोई शक नहीं, राहब अपना जीवन दांव पर लगा रही थी, सब कुछ दांव पर लगा रही थी। इसी कारण याकूब और इब्रानियों का लेखक इब्रानियों 11 में राहब वेश्या को विश्वास के वीरों में स्थान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए बिना हिचक के परमेश्वर पर भरोसा करने, बिना शर्त और बिना योग्यता भरोसा करने के लिए तैयार थी। मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूँ कि इस विश्वास के परिवार, ऐसे विश्वास वाली स्त्रियां कहाँ हैं? वे विश्वास की स्त्रियां कहाँ हैं जो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? जो कुछ आपको प्रिय है उसे परमेश्वर पर विश्वास के लिए, कट्टर विश्वास के लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार रहें। इस विश्वास के परिवार में वे विश्वास के पुरुष कहाँ हैं जो परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन में परमेश्वर की महिमा को फैलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? जो वो करने के लिए तैयार हैं, जो उनके चारों ओर की संस्कृति के विरुद्ध है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिसमें सब कुछ दांव पर लग जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अब्राहम द्वारा अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होने के हजारों वर्ष पश्चात, और राहब द्वारा अपने जीवन को दांव पर लगाने के हजारों वर्ष पश्चात, क्या कलीसिया के रूप में हम परमेश्वर के वचन के पालन में परमेश्वर की महिमा को फैलाने के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं? ये छुटकारे के इतिहास की कहानी है, उन पुरुषों और स्त्रियों की जिन्होंने मशाल हमारे हाथों में सौंपी है। हम अपने से पहले गए हुए लोगों के समान आज्ञा पालन के लिए अपने जीवनों की जोखिम उठाए बिना वचन को सुनते हुए आरामदायक विश्वास में ऐसे ही नहीं बैठ सकते हैं। मैं आपके साथ पूरी तरह ईमानदार रहना चाहता हूं। इस पूरे निर्णायक प्रयोग की बात आने पर मेरे अंदर थोड़ा भय है। ये सवाल है, क्या कलीसिया के रूप में हम वास्तव में कुछ ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसा करने के लिए वास्तव में तैयार हैं? मैंने कुछ बातों को सुना है और कुछ लोगों से बातचीत की है जो कहते हैं कलीसिया के रूप में हम बहुत धीमे आगे बढ़ रहे हैं, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हाँ आओ हम दौड़ें। और फिर कुछ दूसरों के साथ मेरी बातचीत हुई जो कहते हैं कलीसिया के रूप में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमें ऐसा करना भी चाहिए? और मैं कदम पीछे हटाता हूँ और फिर सोचता हूँ, मैं इस विश्वास के परिवार के लोगों के बारे में सोचता हूँ। जब बच्चों की देखभाल की बात आई तो मानव संसाधन विभाग ने कहा उनके सामने जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें 150 परिवारों की आवश्यकता है। इस कलीसिया के 160 परिवारों और व्यक्तियों ने उस कार्ड पर हस्ताक्षर किए जिस पर लिखा था, हम बच्चों की देखभाल या गोद लेने की प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं। परमेश्वर अच्छा है और आप खतरा उठा रहे हैं। ये एक आसान कदम नहीं है। यहाँ के लोगों और परिवारों में से 160 अज्ञात की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, उन परिवारों की सेवा करने के लिए जो हर प्रकार की परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। उसमें बहुत अधिक खतरा है और निश्चित रूप से हर प्रकार के सवाल हैं जो पूछ रहे हैं, एक कलीसिया के रूप में हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? हम लक्ष्य को अपने सामने रखे हुए हैं, हमारी नज़रें आवश्यकता पर लगी हैं, निवारणीय रोगों और भूख से मरते बच्चे, हम कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं और कैसे उनकी खातिर बचत और बलिदान कर सकते हैं? और फिर व्यक्तियों और परिवारों के रूप में इसके बारे में सोचने की चुनौती है। हेदर और मैं बातचीत कर रहे हैं जहां हम पूछते हैं हमारे लिए ये कैसा होगा, हमारे जीवनों में इसकी क्या भूमिका होगी। और मैंने बचत और बलिदान करने के बारे में आपके अलग अलग और रचनात्मक विचारों को सुना है। और कुछ लोग पूछ सकते हैं, दूसरे की बजाय केवल एक ही स्थान को क्यों दिया जाए या किसी एक ही संस्था को क्यों दिया जाए? और वास्तविकता ये है कि स्पष्टता इस संसार में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं, और बहुत से स्थान हैं जहां इन आवश्यकताओं को संसार के विभिन्न भागों में पूरा किया जा रहा है। यदि विश्वास के परिवार के रूप में हम त्याग करते हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उसे आवश्यकता के लेंस से देखते हैं, तो हम नितांत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार सर्वोत्तम और सर्वाधिक बुद्धिमानी से देंगे? हम अपने आप से पूछते हैं, क्या कोई मार्ग है जिससे हम स्थानीय कलीसिया के द्वारा लोगों पर स्थिर दीर्घकालीन प्रभाव डाल सकें? उन्हें भोजन खिलाना, चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना, सुसमाचार सुनाना, और फिर ये मुझे किसी विशेष संस्था की ओर ले जाता है। अब पैरा कलीसिया संस्थाएं स्थानीय कलीसिया की सेवा करती हैं, ये किसी एक संस्था को देने के बारे में नहीं है। जितना ये कलीसिया द्वारा संसार भर के भाइयों और बहनों पर जाना और ये कहना है, हम आपकी सहायता करेंगे, हम सुसमाचार से आपकी सेवा करेंगे, हम यहाँ आपकी आवश्यकताओं के लिए वहाँ बचत और त्याग करेंगे, यही तस्वीर है। ये सब क्या ये जोखिम भरा है? हाँ, क्या लोग तब भी आएंगे जब उन्हें वे सब आरामदायक बातें नहीं मिलती हैं जिनके हम आदी हो चुके हैं? मैं नहीं जानता, क्या हमारे पास कम धन होगा या अधिक धन होगा, मैं नहीं जानता। परंतु मैं ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि हम अब्राहम और राहब जैसे लोगों की लंबी पंक्ति में खड़े हैं जो हमसे पहले जा चुके हैं और जिन्होंने परमेश्वर के वचन के पालन में कदम बढ़ाया और परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के अधीन प्रार्थना की और विश्वास किया कि परमेश्वर जो हजारों पहाड़ियों के पशुओं का स्वामी है वो न केवल योग्य है बल्कि उसने अपने लोगों को उस कार्य को पूरा करने के लिए सब कुछ देने का वादा भी किया है जो उसका वचन उनसे करने के लिए कहता है। तो क्यों ना हम खतरा उठाएं और परमेश्वर पर भरोसा रखें और देखें कि वो क्या करता है। अब इस तरह की भाषा से हम थोड़े असहज हो जाते हैं। एक मार्ग है जिसके द्वारा खतरे की जानकारी हो बुद्धिमान बना जाए। मैं सीटी स्टेट को पढ़ रहा था, जिसके बारे में आप पहले भी मुझसे सुन चुके हैं। ये व्यक्ति देशों तक सुसमाचार को पहुंचाने के लिए पूरी तरह समर्पित था। जब मैं पढ़ रहा था अभी हाल ही में उसकी आत्मकथा में, मैंने कुछ देखा और मैं एकदम रुक गया। मैं सिटी स्टेट से दो उदाहरणों को पढ़ना चाहता हूं। उसने कहा, मसीह हमें भूखों को खिलाने के लिए बुलाता है, न कि तृप्त लोगों को, खोए हुओं को बचाने के लिए, न कि जिद्दी लोगों को, परिहास करने वालों को नहीं, बल्कि पापियों को मन फिराव का संदेश देने के लिए। घर में आरामदायक आराधनालय, कलीसियाएं और गिरजाघर बनाने और सजाने के लिए नहीं, जहां मसीही प्राध्यापक चतुर निबंधों, रूढ़िवादी प्रार्थनाओं और कलात्मक संगीत प्रदर्शनों के माध्यम से सुलाया जाए, परंतु असहायों के बीच आत्माओं की जीवित कलीसियाएं खड़ी करने के लिए, लोगों को शैतान के पंजों से छुड़ाने और उन्हें नरक के जबड़ों से छीन लेने के लिए, मसीह के लिए उनका नाम लिखने और उन्हें तैयार करने और उन्हें परमेश्वर की शक्तिशाली सेना बनाने के लिए। परंतु ये केवल गर्म, गैर पारंपरिक मुक्ति पवित्र आत्मा धर्म द्वारा पूरा किया जा सकता है, जहां ना कलीसिया, ना सरकार, ना मनुष्यों या परंपराओं का प्रचार या आराधना होती है, परंतु केवल क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार और उसी की आराधना होती है। भड़कीले वस्त्रों, चांदी के दंडों या स्वर्ग क्रूसों या कलीसियाई मीनारों या अत्यधिक महंगे कढ़ाईदार वेदी के वस्त्रों द्वारा मसीह का अंगीकार करने के लिए, बल्कि लापरवाह बलिदानों और खाइयों के नायकत्व द्वारा मसीह का अंगीकार करने के लिए। ये अच्छी बात है स्टड। अब ये एक व्यक्ति है जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय पर अपने शेष जीवन को लेकर सूडान जाने का निर्णय लेता है। लोगों ने उससे कहा, आराम करो भाई, अपने जीवन के अंतिम वर्षों को जियो। और अपने जीवन के अंत समय के निकट उसने कलीसिया को ये पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, हमने बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की है कि कोई और आरंभ करे। प्रतीक्षा का समय बीत चुका है, परमेश्वर का समय आ चुका है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। परमेश्वर के पवित्र नाम में आओ हम खड़े होकर बनाएं। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा और हम उसके लिए, हम बालू पर नहीं बनाएंगे, परंतु मसीह के संतों की चट्टान पर बनाएंगे, और अधोलोक के फाटक और लोग हम पर प्रबल ना होंगे। क्या हमारे जैसे लोगों को पूरे संसार के सामने डरना चाहिए? उन्हीं दे गुनगुने विश्वासहीन नाम के मसीह संसार से हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करने की हिम्मत करेंगे। हम उसके लिए बाहर निकलेंगे, हम उसके लिए जिएंगे और उसके लिए मरेंगे, और इसे हम उसके अवर्णनीय आनंद के साथ अपने दिलों में गीत गाते हुए करेंगे। हम मनुष्य पर भरोसा करने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करते हुए हजारों गुना पहले मरना पसंद करेंगे। और जब हम इस स्थिति में आते हैं, तब तक युद्ध जीता जा चुका होगा और महिमामय युद्ध का अंत सामने होगा। हमारे पास परमेश्वर की वास्तविकता, पवित्रता होगी, न कि केवल अच्छे शब्दों और अच्छे विचारों से भरी बातें। यीशु मसीह के लिए कार्यों और विश्वास की हिम्मत के लिए हम में वास्तविक पवित्रता होगी। मैं इसे पढ़ता हूँ और सोचता हूँ, ये याकूब है, विश्वास और कार्यों की हिम्मत। अस्वीकार्य अनुग्रह को पाने वाले लोग कैसे परमेश्वर का भय मानकर उसके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं और उसकी महिमा को फैलाने के लिए जोखिम उठा सकते हैं। अब ये सब पद 26 की ओर ले जाता है, ये अंतिम कथन। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। याकूब अध्याय 2:26। और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ बने रहें। ये निर्णायक प्रयोग या ऐसी किसी भी बात से अधिक महत्वपूर्ण है। अगले कुछ पलों के लिए अंतिम पल जो हमारे पास हैं, मैं इनमें से प्रत्येक को पुनः जल्दी से देखना चाहता हूँ। मैं विश्वास के परिवार में प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष, स्त्री और छात्र के साथ इसे व्यक्तिगत रूप में देखना पसंद करता, क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के सामने सही हैं? क्या आप जानते हैं कि क्या आपको परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया गया है? पवित्र वचन के आधार पर मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी है या नहीं। धर्मी ठहराए जाने का सारांश, तीन वास्तविकताएं। धर्मी ठहराए जाने का सारांश, तीन वास्तविकताएं। पहली, मसीह हमारे धर्मी ठहराए जाने का आधार है। मैं और आप जो पापी हैं, हम पवित्र परमेश्वर के सामने धर्मी कैसे ठहराए जाते हैं? हम धर्मी कैसे घोषित किए जा सकते हैं जबकि हम इतने धर्मी नहीं हैं? हमारे अंदर पाप भरा है और इससे छुटकारा पाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसने हमें कलंकित कर दिया है, तो आप और मैं परमेश्वर के सामने धर्मी कैसे हो सकते हैं? हमें आवश्यकता है कि कोई दूसरा जो धर्मी है हमारे लिए खड़ा हो। हमें दूसरे की धार्मिकता की आवश्यकता है। याकूब पौलुस इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, हमें दी गई है और यही मसीह ने किया है। उसने वो धर्मी जीवन बिताया जो आप नहीं जी सके, और फिर वो मरा पापपूर्ण मृत्यु। मृत्यु, पाप का दंड, उसने उस मौत को अपने ऊपर लिया जिसके योग्य आप थे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मसीह हमारे पाप को अपने ऊपर लेता है और वो अपनी धार्मिकता को लेकर हमें पहनाता है। अतः यदि मैं आपसे पूछूं, यदि हम इस समय एक एक करके एक दूसरे के साथ बात करें और मैं आपसे पूछूं, तुम कैसे जानते हो कि तुम परमेश्वर के सामने धर्मी हो? यदि आपका उत्तर इससे शुरू होता है, क्योंकि मैं, तो रुक जाएं। यदि आपका उत्तर इससे आरंभ होगा, क्योंकि मैंने ये किया है या क्योंकि मैंने वो किया है, तो आप सुसमाचार के संपूर्ण बिंदु से चूक रहे हैं। यदि मसीह ने जो किया है उसे वो नहीं करता, तो आपने चाहे जो भी किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर के सामने धर्मी कैसे ठहरते हैं? मसीह के कारण, क्योंकि मसीह ने वो जीवन बिताया जिसे मैं नहीं जी सका, और उसने मेरी मौत को अपने ऊपर ले लिया। ये आरंभिक बिंदु है, ये हमारे धर्मी ठहराए जाने का आधार है। क्रूस पर मसीह का कार्य, क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह हमारे धर्मी ठहराए जाने का आधार। अब ये सवाल उठता है, उसने ये किया, ठीक है, ये मेरे जीवन में कैसे लागू होता है? क्या ये संभवता हो जाता है? जब वो क्रूस पर मरा तो क्या सारे लोग परमेश्वर के सामने धर्मी बन गए? या ये कुछ ऐसा है जिसमें आपको जन्म लेना है, या फिर इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको कुछ करना है? ये दूसरे आयाम की ओर लाता है। मसीह हमारे धर्मी ठहराए जाने का आधार है। विश्वास हमारे धर्मी ठहराए जाने का माध्यम है। इससे न चूकें। विश्वास कार्य नहीं है, विश्वास भरोसा है। ये अधीनता है, समर्पण है। ये वो एहसास है कि परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी है कि वो इसे आपके अंदर करे, और ये इसे आपके अंदर करने के लिए उस पर भरोसा करना है। ये क्रूस पर उसके कार्य के द्वारा आपके पापों को ढांपने के लिए उस पर भरोसा करना है। ये आपके पापों से उद्धार देने वाले के रूप में, अपने जीवन के प्रभु के रूप में मसीह पर भरोसा करना है। यही विश्वास है। विश्वास बौद्धिक सहमति नहीं है। विश्वास ये नहीं है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु क्रूस पर मरा। बड़ी बात। दुष्ट आत्मा भी ये विश्वास करते हैं। विश्वास पवित्र वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार है। विश्वास की तस्वीर ये स्वयं से मसीह पर भरोसे की ओर मुड़ना है। क्या आपने मसीह पर भरोसा किया है? ये धर्मी ठहराए जाने का माध्यम है। पौलुस कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो हमारा परमेश्वर के साथ मेल है। रोमियो अध्याय 5:1। ये ऐसा नहीं है कि एक बार वेदी की ओर जाना, कार्ड पर हस्ताक्षर करना, एक प्रार्थना को बोलना, ये एक भरोसा है। अपने दिल और अपने जीवन को उस एकमात्र व्यक्ति के हाथों में देना जो आपका उद्धार कर सकता है। और ये अंतिम भाग की ओर लाता है। कार्य हमारे धर्मी ठहराए जाने का प्रमाण हैं, क्योंकि जब इस प्रकार का भरोसा होता है तो विश्वास फल लाता है। यही हमने पिछले दो सप्ताहों में देखा है। क्या इसका मतलब है कि अब हमारे कार्य हमारे धर्मी ठहराए जाने का आधार बन गए हैं? बिल्कुल नहीं। सावधान रहें, वहां ना जाएं। मसीह का कार्य आधार है, उसमें हमारा विश्वास माध्यम है। शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्य से परमेश्वर का आदर नहीं होता, विश्वास के द्वारा किए जाने वाले कार्य से परमेश्वर की बड़ी महिमा होती है। कार्य धर्मी ठहराए जाने का प्रमाण है। यही याकूब 2 की संपूर्ण तस्वीर है। अब्राहम अपने पुत्र को बलि करने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया, उसे विश्वास था, और उसके फलस्वरूप वो अपने पुत्र को बलि करने के लिए तैयार था। राहब ने विश्वास किया, उसे विश्वास था, और इसके फलस्वरूप उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। विश्वास से बहने वाले कार्य हमारे धर्मी ठहराए जाने का प्रमाण हैं। अब दो स्मरणीय बातें जो महत्वपूर्ण हैं। पहली, ये तीनों वास्तविकताएं केवल परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा संभव हैं। अब स्पष्टता, हम पहली वास्तविकता को सोचते हैं। निश्चित रूप से मसीह ने क्रूस पर जो किया वो अनुग्रह है, परंतु इससे न चूकें। दूसरी दो वास्तविकताएं भी अनुग्रह द्वारा संचलित हैं, केवल अनुग्रह द्वारा संभव है। विश्वास के बारे में सोचें। हम पापी थे, अनाज्ञाकारिता की संतान, क्रोध की संतान थे। हम में कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमें परमेश्वर की ओर खींचे। हम उससे मुड़ गए थे। हम पाप में मरे हुए थे। मृतकों को जीवन कैसे दिया जा सकता है? ये उन्हें दिया जाना चाहिए। हम अपने बल पर जीवित होने का निर्णय नहीं ले सकते हैं। यहाँ दिए गए अनुग्रह का होना आवश्यक है, और ये मनुष्य की जिम्मेदारी को समाप्त नहीं करता है, परंतु बात यह है कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और फिर हमारे कार्यों में, हमारे आज्ञा पालन में, ये जीवित अनुग्रह है। ये हमारे जीवनों में अनुग्रह का कार्य है। जैसे मैं इसे देखता हूँ, और मैं यहाँ सावधान रहना चाहता हूँ, क्योंकि उदाहरण टूट जाता है, इसलिए इसे अधिक दूर न ले जाएं। परंतु कल्पना करें कि आप अपने बच्चे को अपने लिए उपहार खरीदने हेतु धन देते हैं। क्या उन्होंने वास्तव में आपको कुछ दिया? हाँ, और वास्तव में नहीं, क्योंकि आपने ही इसे संभव बनाया है। वास्तविकता यह है कि मैं परमेश्वर के सामने जो भी भेंट चढ़ाता हूँ, जिससे वो प्रसन्न होता है, वो केवल उसने पहले जो दिया है और उस पल मुझे जो दे रहा है, उसी के कारण संभव है। अनुग्रह आधार, माध्यम और धर्मी ठहराए जाने के प्रमाण की नींव। और फिर दूसरी बात, ये तीनों वास्तविकताएं अंतिम रूप से परमेश्वर के सामने न्याय में शामिल है। मेरा मतलब ये है, और मेरा विश्वास है कि पौलुस, याकूब और संपूर्ण नए नियम की शिक्षा ये है, जब आप स्वर्ग में परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, मैं यहाँ अंतिम रूप से धर्मी ठहराए जाने की बात कर रहा हूँ, जब ये खुले में घोषित किया जाएगा और फिर अंतिम नियति, ये तीनों इस तस्वीर में शामिल हैं। आप या मैं किस आधार पर अनंत काल के लिए स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे? मैं के कारण नहीं, मसीह के कारण। उस दिन धर्मी ठहराए जाने का आधार आज के समान ही आधार वो है जो मसीह ने क्रूस पर और अपने पुनरुत्थान में किया है। अब ये आपके जीवन का एक यथार्थ कैसे बना? पिता, मैं अपने हाथ में कुछ नहीं लाया, केवल क्रूस से चिपका हूँ। मेरे पास उसके अलावा कुछ नहीं है जो आपने मेरे लिए किया है। आपने आपके लिए मेरी ज़रूरत के प्रति मेरी आँखों को खोला है, और आपके अनुग्रह से मैंने अपने पापों को ढांपने के लिए मसीह पर भरोसा किया है। विश्वास, माध्यम। और फिर पृष्ठभूमि में आधार या माध्यम के रूप में नहीं, लेकिन फल है जो दिखाता है कि विश्वास था। ये शैतानी बौद्धिक विचार नहीं था। पृष्ठभूमि में सिद्धता नहीं है, परंतु विश्वास का फल है जो उस दिन है कि जो पौलुस ने रोमियो अध्याय 2:6 में कहा है, वो पूरी तरह सत्य हो। उस दिन परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5, हम सब मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे और हमने देह में रहते हुए जो किया है उसके आधार पर प्रतिफल दिया जाएगा। और मैं इस पर बल देना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति में जब किसी की मृत्यु होती है तो चाहे उसमें मसीह में विश्वास का कोई फल न हो, तुरंत लोगों का निष्कर्ष होता है निश्चित रूप से वे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हैं और ये सत्य नहीं है। जी हाँ, ये सत्य नहीं है। अब हम में से कोई भी मनुष्य के हृदय के रहस्यों को नहीं जानता और मैं किसी का अनंत न्यायी नहीं हूँ, न ही आप हैं। परमेश्वर अनंत न्यायी है और इसलिए हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, वे निश्चित रूप से नरक में हैं, वे निश्चित रूप से स्वर्ग में हैं, परंतु परमेश्वर जो न्यायी है उसने कहा है और उसने बताया है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है और ये उद्धार नहीं करता। और यहाँ पर ये इतना कठिन है क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस विश्वास के परिवार में ऐसे पुरुष और स्त्रियाँ और छात्र हैं जो जानते हैं कि मसीह हमारे धर्मी ठहराए जाने का आधार है और आपने विश्वास के द्वारा मसीह के कार्य को अपने लिए प्राप्त किया है और उससे आपके कार्य में फल उत्पन्न हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा इस वचन को लेकर इसे आपके जीवन में वहां लागू करे जहां इसे लागू किए जाने की आवश्यकता है। ये सिद्धता नहीं है, ये प्रगति में है, परंतु उससे फल उत्पन्न हो रहा है और मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने और उत्साहित हों। मैं चाहता हूं आप इसे सुने और आशा के साथ उस दिन की प्रतीक्षा करें। परंतु दूसरी ओर, या तो आप जानते हैं कि आप मसीही नहीं हैं या आपने सोचा है कि आप मसीही हैं लेकिन आपके जीवन में मसीह के विश्वास का कोई फल नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि आप उत्साहित हों और उस दिन की आशा के साथ प्रतीक्षा करें। मैं केवल इसकी खातिर नरक की अग्नि और नाश का प्रचारक नहीं बनना चाहता, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण रूप से मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह आधार है, विश्वास माध्यम है, कार्य धर्मी ठहराए जाने का प्रमाण है। यदि ये बातें आपके जीवन का यथार्थ नहीं हैं, तो आपको उस दिन के अनंत क्रोध से डरने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के आत्मा के साथ मेरी प्रार्थना है कि ये शब्द इस समय पहली बार आपके दिल में बैठ जाएं और आप वो देखें जो राहब ने देखा कि परमेश्वर सर्वोपरि है, हम पापी हैं और हम उसके न्याय के योग्य हैं और हमें अपने उद्धार के लिए उसकी आवश्यकता है। और इसी समय अपने दिल में पहली बार आप कहें, मसीह ने मेरे लिए कार्य किया है, उसने किया है। और इस समय आप पहली बार अपने दिल में कहें, हाँ, मुझे मसीह की आवश्यकता है कि वो इसे मेरे लिए करे। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पूरी तरह बदल दे, मेरे पापों को ढाप दे और मुझे जीवन दे, जीवन जो आने वाले दिनों में उसकी महिमा के लिए फल लाएं। और जब आप इस तरह उस पर भरोसा रखते हैं, इसी समय आप उस पर भरोसा करें, इसी पवित्र पल में ब्रह्मांड का परमेश्वर आपके जीवन को देखकर कहता है, मसीह में धर्मी। यदि आप उस पर भरोसा करेंगे तो वो अपने अनुग्रह के द्वारा आपको इसी पल धर्मी घोषित करेगा। मैं चाहता हूँ आप अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करें और एक पल के लिए केवल इस सवाल पर ध्यान दें कि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के सामने धर्मी हैं। और यदि हाँ, तो इस पल मैं आपको उसके प्रति निश्चित होने का निमंत्रण देता हूँ जिसकी मसीह के आधार पर आपके लिए घोषणा की गई है, विश्वास माध्यम है। और आप उससे मांगें कि आप अपने जीवन भर निरंतर फल लाते रहें। परंतु यदि आप ये नहीं जानते हैं, तो अभी इसी पल मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप मसीह पर भरोसा करें, अपने घमंड को दूर करें, मसीह ने जो किया है उसे देखने के लिए अपने आप से मुड़ें, आपकी खातिर क्रूस पर किया गया उसका कार्य, अपने जीवन में पहली बार उससे लिपट जाएं, केवल ये विश्वास करना नहीं कि उसने ये किया है, बल्कि उससे चिपक जाएं, अंगीकार करें कि केवल वही आपके पापों का एकमात्र उद्धार करता है, आपके जीवन का प्रभु है, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अभी इसी पल वो आपको धर्मी ठहराता है। उसका वचन आपसे ये कहता है, ये उन कार्यों के बारे में नहीं है जिनके द्वारा आप इसे उत्पन्न कर सकें, ये वो कार्य जो अब इससे बहता है, जो उसने आपके जीवन में किया है, जब वो आपके जीवन को आपकी भलाई और उसकी महिमा के लिए बदलता है। यदि आपको ऐसा करना है तो मैं इसी समय आपको ऐसा करने का निमंत्रण देता हूँ।